हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगले दिन की सुबह धृति और माधुरी दोनों के लिए खुशनुमा रही। आज अर्णव नहीं था, इसलिए धृति पर कोई दबाव नहीं था, वो मुक्त महसूस कर रही थी। माधुरी के साथ होने से उसे खुशी का अनुभव हुआ। माधुरी खुश थी क्योंकि आज उठने के बाद उसने खुद को अकेला नहीं पाया था। काफी समय बाद आज उसके साथ कोई था जिसे वो अपना कह सकती थी, जिसकी मौजूदगी ने उसके अकेलेपन को दूर कर दिया था। दोनों ने फिर से साथ मिलकर नाश्ता बनाया। आज इतने समय में पहली बार धृति ने अपने पसंद का नाश्ता खाया। फिर धृति और माधुरी तैयार होकर ऑफिस पहुंची और अपने अपने केबिन की ओर बढ़ गईं। आज रक्षाबंधन था। धृति का कोई भाई नहीं था, इसलिए इस दिन का उसके लिए कभी कोई महत्व नहीं रहा था। वो सामान्य थी, जबकि माधुरी आज थोड़ी निराश थी क्योंकि वो अपने भाई से दूर थी और उसे राखी नहीं बांध सकती थी। अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए माधुरी की नज़र कबीर के केबिन पर पड़ी। इसके साथ ही उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत का विचार आया और आंखों में एक अलग चमक के साथ होठों पर शैतानी मुस्कान लिए उसने कबीर के केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो केबिन खाली था, मतलब कबीर अब तक नहीं आया था। माधुरी ने अपना पर्स सोफे पर रखा और उसके पीछे की चेन से एक राखी निकाल ली। उसके बाद वो कबीर की कुर्सी के दोनों हाथों पर हाथ फैलाए, पैर पर पैर चढ़ाकर एकदम महाराजाओं की तरह तनकर कुर्सी पर बैठ गई और अपनी उंगलियों से टिक टिक करते हुए दरवाजे पर नजरें टिकाए कबीर का इंतजार करने लगी। कुछ 10-15 मिनट बाद केबिन का दरवाजा खुला और कबीर ने अंदर कदम रखा। इसके साथ ही माधुरी के होठों पर शरारत भरी मुस्कान फैल गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कबीर अचानक केबिन में माधुरी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसने चौंकते हुए नजरें घुमाई और अपनी कुर्सी पर बैठी माधुरी को देखकर अचंभित सा बोला, तुम इस वक्त यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रही हो। कबीर सुबह सुबह माधुरी को यहाँ देखकर बुरी तरह चौंक गया और आंखें फाड़कर उसे देखने लगा, जबकि माधुरी एकदम शांत थी। वो बड़ी ही अदा से कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराई, बताया तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार क्यों, कबीर ने एक बार फिर चौंकते हुए सवाल किया। माधुरी उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई, फिर अपनी उंगलियों के बीच फंसी राखी को हवा में घुमाते हुए उसके तरफ कदम बढ़ा दिए। आज रक्षाबंधन है कबीर, तो मैं तुम्हारे लिए खुद से पसंद करके एक प्यारी सी राखी लाई हूँ और उसे तुम्हारी कलाई पर बांधने के लिए तुम्हारा बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वॉट नॉनसेंस इज दिस, सुबह सुबह ये क्या बकवास कर रही हो तुम, जानते भी हो कि क्या बोल रही हो और क्या मतलब है इसका। कबीर बुरी तरह चौंक और घबरा गया। माधुरी की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और घबराहट में वो माधुरी पर बरस पड़ा। माधुरी के चेहरे की मुस्कान अब फीकी पड़ गई और आंखों में गुस्सा और रोष के भाव उभर आए। वो कबीर के ठीक सामने आकर रुकी और आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। तुम्हारे वजह से मैं अपने भैया से दूर हूँ, उन्हें पहली बार राखी नहीं बांध सकती, इसका बदला अब मैं तुमसे लेकर रहूंगी और अब उनके जगह ये राखी तुम्हारे हाथ पर बांधूंगी। माधुरी ने एक बार फिर राखी हवा में लहराई और जैसे ही कबीर के हाथ में बांधने को हुई, कबीर हड़बड़ाहट में पीछे हट गया और गुस्से से तेज आवाज में बोला, माधुरी पागल मत बनो, बंद करो अपना ये मजाक, वरना तुम्हारा ये मजाक मेरी जान ले लेगा, और जो तुम कतरा कतरा मुझे मार रहे हो उसका क्या। माधुरी भी गुस्से में उस पर भड़क उठी। वो कबीर से 2 कदम पीछे हट गई और अब उसके चेहरे के भाव कुछ बदले हुए थे। चेहरे पर उदासी और आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं तुम्हारे वजह से अपनी फैमिली, अपने भैया सबसे दूर यहाँ चली आई, पर तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं है। इतने महीने बीत गए पर तुमने एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं की, ये जानने तक की भी कोशिश नहीं की कि मैं ठीक हूँ या नहीं, अकेले कैसे रह रही हूँ, कोई परेशानी तो नहीं मुझे, तुम्हारी जरूरत तो नहीं मुझे, तुम्हें बस अपने दोस्त और उसके बदले से मतलब है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ आती ही नहीं, तब कम से कम मैं अपनी फैमिली के तो साथ रहती, किसी मासूम पर अत्याचार होते तो नहीं देखना पड़ता मुझे। माधुरी की बातें सुनकर कबीर के चेहरे के भाव भी कुछ बदल गए। उसने अपने और माधुरी के बीच की दूरियों को कम किया और चंद कदम बढ़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर प्यार से उसके गाल को छूते हुए संजीदगी से बोला, ये तुम्हारा अपना फैसला था मधु, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं किया था, वो तुम थी जो इंडिया आना चाहती थी, हमारे रिश्ते को छुपाकर एक फ्री लाइफ जीना चाहती थी, अपने हिसाब से रहना चाहती थी, मैंने कहा था तुम्हें कि मेरे फ्लैट पर मेरे साथ रहो, पर तुमने मना किया और अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट चुना, वो तुम थी जो चाहती थी कि जब तक हम इंडिया में हैं हमारे रिश्ते को भूलकर एक बॉस और सबॉर्डिनेट बनकर रहें। वो तुम थी जो धृति के लिए हर बार मुझसे लड़ पड़ती थी। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने पास और खुश रखना चाहा है, फिर ये नाराज़गी, ये शिकायत मुझसे क्यों? माधुरी अब पलटकर कुछ कह नहीं सकी, बस अपना सर उसके सीने पर टिका दिया और अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कसते हुए बोली, मैंने तब नहीं सोचा था कि ये सब इतना मुश्किल होगा। मुझे लगा था कि बहुत रोमांचक अनुभव होगा और मैं खूब एंजॉय करूंगी, पर अब जब अकेले रहती हूँ तो सबकी बहुत याद आती है, उन पलों को बहुत मिस करती हूँ। माधुरी की बातें सुनकर कबीर के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने माधुरी को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और उसके सर पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए बोला, अब भी वक्त है, शिफ्ट हो जाओ मेरे अपार्टमेंट में और रहते हैं साथ, बिल्कुल वैसे जैसे लंदन में रहा करते थे। नहीं, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती, माधुरी ने सीधे से इनकार कर दिया। कबीर ने उसकी बात सुनकर जरा नाराजगी से कहा, फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना। हूँ, माधुरी ने हुंकारी भरी और अपनी बाहों के घेरे को उस पर कस दिया। कबीर ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ पल उस केबिन में उनकी धड़कनों का संगीत गूंजता रहा और एक दूसरे के सीने से लगे दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे। कुछ पल बाद माधुरी ने कबीर से दूर हटते हुए गंभीरता से कहा, कबीर, मुझ पर विश्वास करो, धृति वैसी नहीं जैसी तुम्हें और उस जल्लाद को लगती है। वो बहुत प्यारी और मासूम है, वो भूलकर भी कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें और अर्णव को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, सब शीशे की तरह साफ है मधु, गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं। कभी कभी शीशा भी गलत दिखाता है कबीर, भूलो मत कि अक्सर शीशा हमारे अपने अक्ष को गलत दिखाकर हमें धोखा देता है। उसमें सीधी चीज उल्टी और उल्टी चीज सीधी नजर आती है। सच्चाई वो भी बयान नहीं करता, जबकि इंसान की आंखें हमेशा हकीकत बयां करती हैं। माधुरी ने दृढ़ता से कबीर की बात पर कटाक्ष किया, पर कबीर मौन साधे खड़ा रहा। उसकी ये खामोशी देखकर माधुरी बुरी तरह खींच उठी और एकाएक उस पर भड़क गई, तुम कुछ मत करना, बस यूं ही मौन साधे खामोशी से तमाशा देखते रहना, पर याद रहे कि तुम्हारा यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और आगे चलकर तुम बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि अर्णव गुस्से में धृति के साथ जो कर रहा है उसमें बराबरी के हिस्सेदार तुम भी हो, उसके हर गुनाह में तुम्हारी साझेदारी है और जब सजा की बारी आएगी तो उसके जितनी ही सजा तुम्हें भी मिलेगी और वो सजा होगी तुम्हारी इस खामोशी की, जिसे इख्तियार करके तुम हर गलत चीज को अनदेखा कर रहे हो, अपने दोस्त को हर गलत काम करने की आज़ादी दे रहे हो, उसे रोकने के बजाय उसका साथ देकर उसे और बढ़ावा दे रहे हो, जबकि दोस्त का फर्ज अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाना होता है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम यहाँ एक दोस्त होने का फर्ज निभाने में बुरी तरह से फेल हो चुके हो।
माधुरी ने अफसोस भरी नज़रों से उसे देखा, फिर नाराज़गी से अपना चेहरा फेर लिया और सोफे पर रखा अपना पर्स लेकर सीधे केबिन से बाहर निकल गई। एक बार फिर धृति के कारण दोनों के बीच भयंकर बहस हो चुकी थी। कबीर ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। माधुरी गुस्से में दंदनाते हुए अपने केबिन में पहुंची। कुछ पल गुस्से में यहां से वहां चक्कर काटती रही, फिर उसने गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए खुद को शांत किया और शांत दिमाग से गहराई से सब बातों के बारे में सोचने के बाद खुद से ही बोली, मधु शांत हो जा और ठंडे दिमाग से काम ले, यूं गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुझे इस स्थिति को शांति और बहुत समझदारी से संभालना होगा। कोई अगर तुझ पर विश्वास नहीं करता तो कोई बात नहीं, अब तुझे खुद अपने विश्वास को सही साबित करना होगा। धृति भले ही अर्णव की नफरत की वजह नहीं जानती, पर अपनी जिंदगी के बारे में तो सब जानती होगी। अगर तू उसके बारे में सब जान जाए तो तू यकीनन हकीकत तक पहुंच जाएगी। तुझे अब बस कैसे भी करके धृति के अतीत के बारे में जानना होगा। मधु ने मन ही मन कुछ फैसला किया, फिर अपने काम में लग गई। लंच में उसका सामना कबीर से हुआ, पर वो उससे नाराज थी तो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए धृति के साथ आगे बढ़ गई। आज फिर दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया, साथ खाया, फिर रूम में चली आईं। माधुरी ने बातों की शुरुआत की और अपनी फैमिली के बारे में, स्कूल कॉलेज के किस्सों के बारे में उसे बताने लगी। उसके मज़ेदार किस्सों को सुनकर जहाँ धृति खिलखिलाकर हंस पड़ती, वहीं उसकी फैमिली के बारे में सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई, जिससे साफ जाहिर था कि अपनी फैमिली के साथ उसकी ऐसी कोई अच्छी याद नहीं है। जब माधुरी ने उससे उसकी फैमिली और बीती जिंदगी के बारे में पूछा तो धृति कुछ पल खामोश रही, फिर उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। मतलब साफ था कि अपनी फैमिली और अतीत के बारे में वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। इस वक्त धृति माधुरी के लिए एक बंद किताब थी जिसमें कई राज कैद थे और शायद उन राजों पर से पर्दा उठाने के लिए उसे धृति का विश्वास जीतना था, उसके और करीब जाना था ताकि वो बेझिझक अपने अतीत के पन्नों को उसके आगे खोल सके, जिससे माधुरी उसकी बेगुनाही के सबूत ढूंढ सके। माधुरी के सवाल के बाद धृति का मन अनमना सा हो गया। उसने नींद का बहाना बनाया और माधुरी की तरफ पीठ करके लेट गई। माधुरी ने कुछ सोचते हुए गहरी सांस छोड़ी और वो भी लैंप ऑफ करके लेट गई। नींद आज दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। दोनों के जहन में अलग अलग ख्यालों का तूफान उठ रहा था, पर दोनों ही शांति से लेटी हुई थीं।